हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कुछ दिन और बीत गए थे। आकाश धृति की शर्त मान गया था और आज वही दिन था जब उसे उस शर्त को पूरा करना था, जिसके बाद उसे उसका प्यार धृति मिलने वाला था। आज फेयरवेल पार्टी थी जो कि पब में रखी गई थी। फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे। धृति अपने दोस्तों और रॉकी के साथ ड्रिंक काउंटर के सामने लगे काउच पर बैठी थी। हेमंत भी उस दोस्तों के समूह में शामिल था। आकाश धृति के सामने एक घुटने पर टिका हुआ था। उसके हाथ में प्यारे प्यारे लाल गुलाबों का एक खूबसूरत सा बुके था, जिस पर डायमंड की रिंग दूर से ही चमक रही थी। धृति उसके दोस्तों के साथ बाकी सबकी नज़रें भी उसी पर टिकी हुई थीं। धृति ने आंखों से आकाश को कुछ इशारा किया। इशारे को समझते हुए आकाश ने बुके टेबल पर रखा और थोड़ा सकुचाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। धृति ने उसकी मदद की और आगे बढ़कर उस शर्ट को उसके बदन से दूर कर दिया। देखने में बुरा तो वो भी नहीं था, हैंडसम था, बॉडी भी बढ़िया बनाई हुई थी, बस नेचर थोड़ा शर्मीला था। ऐसे बिना शर्ट के सबके सामने उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर प्यार के लिए मरता क्या न करता। उसने एक गहरी सांस अपने फेफड़ों में भरी और बुके अपने हाथों में थामते हुए उसे धृति की तरफ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू धृति, विल यू मैरी मी। वहां पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गया। सब सांसें थामे धृति के जवाब का इंतजार करने लगे। धृति ने उसके आगे झुकते हुए अपनी ही अदा से अपना बायां हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। उसकी हाँ समझ पर आकाश का तनावपूर्ण चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बुके से रिंग निकाली और धृति की रिंग फिंगर में पहना दी। धृति ने अपनी उंगली में मौजूद डायमंड की उस चमचमाती रिंग को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, थैंक्स फॉर द रिंग। इसके बाद धृति ने उसके हाथ को पकड़कर उसे खड़ा किया और उस बुके से एक गुलाब का फूल निकालकर उसके चेहरे से लेकर कमर तक के बदन को फूल से सहलाते हुए बोली, आई ऑल्सो लव यू आकाश, बट यू आर नॉट माई टाइप। तुम फैमिली बॉय हो और मेरा फैमिली बनाने का कोई इरादा नहीं है। मैं रिलेशनशिप में रह सकती हूँ, पर शादीवादी कभी नहीं। तुम्हारे साथ मैंने जितना वक्त बिताया वो काफी अच्छा और यादगार था मेरे लिए, पर अब मैं इस रिलेशनशिप को और नहीं घसीट सकती। अब तुम मेरे किसी काम के ही नहीं। जो तुम मुझे दे सकते हो वो रॉकी भी दे सकता है। इनफैक्ट वो तुमसे बेहतर चॉइस है मेरे लिए, बिल्कुल मेरे टाइप का, जो खुलकर जिंदगी जीने, एंजॉय करने में विश्वास रखता है। सो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। पर अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही मोहब्बत है और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तो तुम चाहो तो रॉकी के साथ साथ मैं तुम्हारा मन भी बहला सकती हूँ। एक बार फिर धृति ने अफसोस जाहिर करते हुए अपनी बेशर्मी दिखाई और आकाश के करीब जाने लगी। धृति जैसे ही उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी, आकाश ने एकाएक उसे खुद से दूर धकेल दिया, जिससे धृति फर्श पर गिर गई। यू ब्लडी बिच, आकाश गुस्से से चीखा। पहली बार उसे इतने गुस्से में और ऊंची आवाज में बोलते उन्होंने सुना था। सभी जो उसने कहा उससे स्तब्ध थे। जमीन पर गिरी धृति की सबके सामने घोर बेइज्जती हो चुकी थी, जो उसके बर्दाश्त से बाहर थी। रॉकी ने तुरंत उसे उठाया और गुस्से में फुंकारती धृति ने आकाश पर हाथ उठा दिया, पर आकाश ने बीच में ही उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया और जलती निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, बस अब और नहीं। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझकर नाजायज फायदा उठाया मेरा। अपनी सारी जरूरतें, सारे शौक मुझसे पूरा करवाए और मेरी ही पीठ पर छुरा घोंपती रही। मैंने दिलो जान से तुम्हें चाहा और तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करके अपना मन बहलाती रही। मेरे साथ रिश्ते में होते हुए दूसरे लड़कों के साथ रातें गुजारती रही, पर मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी शर्त तक पूरी की सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें खोना नहीं चाहता था, पर अब बस बहुत हुआ, इससे ज्यादा बेवकूफ़ी नहीं कर सकता मैं। यू नो वॉट, मुझे आज एहसास हो रहा है कि तुम जैसी कैरेक्टरलेस गोल्ड डिगर से प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम जैसी लड़की बस दूसरों की रातें हसीन बनाने के लिए ही होती है। तुम मेरा किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती। तुम मुझे रिजेक्ट कर रही थी ना, पर अब मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। मुझे तुम जैसे बेशर्म बच्चा लंचालबाज लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज से और अभी से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। और एक बात, तुमने जो सबके सामने मेरा तमाशा बनाया है ना, इसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि बदकिस्मती से तुम एक लड़की हो और मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, पर दोबारा अगर कभी तुम मेरे सामने आई तो याद रखना कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाती आई हो ना तुम अब तक, पर आज तुमने मुझे शराफत छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और इतिहास गवाह है, जब जब शरीफ इंसान ने अपनी शराफत छोड़ी है दुनिया के लिए बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि उससे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता, इसलिए बचकर रहना मुझसे। आकाश ने चेतावनी भरी नजरों से उसको घूरा और उसे खुद से दूर झटक कर अपनी शर्ट उठाते हुए गुस्से में वहाँ से चला गया। धृति ने प्लान तो बनाया था कि आकाश को सबके सामने बेइज्जत करेगी, उसे ह्यूमिलिएट करके उसके दिल को तोड़ेगी, पर यहाँ तो उसकी बाजी उस पर ही उल्टी पड़ गई थी। सबके सामने उसकी भारी बेइज्जती हो गई थी, गॉसिप का टॉपिक बन गई थी वो, और सबकी निगाहें जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। धृति से अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई, गुस्से से तिलमिलाई हुई थी वो, और आकाश से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसने पब के रूम में जब आकाश उसके आगे गिड़गिड़ाया था उस वीडियो क्लिप को वायरल कर दिया। पूरे कॉलेज में आकाश की इमेज की धज्जियां उड़ गईं। आकाश की बेइज्जती के साथ धृति ने अपनी इज्जत बढ़ाई कि आकाश उसके आगे प्यार के लिए गिड़गिड़ाया था। आकाश जब कॉलेज आया तो सबकी निगाहें अजीब तरह से घूर रही थीं। कुछ स्टूडेंट्स तो उसकी नकल उतारकर उसका मजाक भी उड़ाते थे। पूरा कॉलेज उसकी हंसी उड़ा रहा था और उन सब के लिए आकाश एक लूजर था जो सबके लिए गॉसिप का टॉपिक बन चुका था। रॉकी के साथ मिलकर धृति ने आकाश को कॉलेज में बहुत ह्यूमिलिएट किया। आकाश जो एक नाजुक दिल का सीधा साधा लड़का था उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। धृति ने उसे धमकी भी दी कि उसने उसकी इंसल्ट की थी और अब अपना बदला लेने के लिए वो उस रात की वीडियो को अपने चेहरे को ब्लर करके वायरल कर देगी। आकाश ना तो उसकी कंप्लेंट कर सका और ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सका। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, एग्जाम्स तक नहीं दिए। यहाँ इसके साथ इतना कुछ हो रहा था और आकाश ने किसी को इस बारे में जरा भी खबर तक नहीं दी। आकाश सब अकेले सहता गया। पहले प्यार में धोखा, धृति का क्रूअल चेहरा, पूरे कॉलेज में उसकी इंसल्ट, इतनी ह्यूमिलिएट। शर्मिंदगी के कारण वो बाहर जाने से भी डरने लगा और खुद को अपने अपार्टमेंट में कैद कर लिया। उस वक्त वो कितने दर्द में था इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था, और हार कर उसने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। करीब 2 महीने तक वो सब अकेले सहता रहा और जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसी फ्लैट की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने तो अपने दुखों का अंत कर लिया, पर उसके अचानक चले जाने से उसका परिवार दुखों के समुद्र में डूब गया। खुद को खत्म करने से पहले उसने ये डायरी अर्नव को भेजी थी, पर जब तक डायरी अर्नव तक पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। उसका भाई जिसे वो जान से ज्यादा चाहता था वो दुनिया से जा चुका था। कुछ वक्त तो अर्नव को इस शौक से निकलने और अपने परिवार को संभालने में ही लग गया। उसके बाद उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की ठानी। सबके लिए ये आत्महत्या थी, पर अर्नव जानता था कि ये आत्महत्या नहीं, मर्डर था। उसे अपनी जान लेने पर मजबूर किया गया था। उसके भाई ने जो सहा उस सब का बदला लेना था उसे, और इसलिए वो इंडिया मुंबई आया, धृति पर नजर रखवाई। तब सृष्टि एग्जाम के बाद ही वहाँ से दिल्ली जा चुकी थी। घर में सिर्फ धृति और उसकी माँ कोमल जी ही रहते थे। यहाँ अर्नव की प्लानिंग शुरू हुई और साथ ही शुरू हुई धृति की बर्बादी की कहानी।
उन सब बीती बातों को याद करते हुए अर्नव की आंखों में नमी तैर गई। उसने अपनी आंखों को कस के भींच लिया। उसे ऐसा लगा मानो उसे सांस ना आ रही हो, दम घुटने लगा हो। सीने में दर्द की लहर सी उठी जो उसके बर्दाश्त से बाहर था। कुछ वक्त लगा अर्नव को खुद को संभालने में। उसने गहरी सांस अपने सिकुड़ते फेफड़ों में भरी और अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए उस डायरी में मौजूद इनवेलप को निकाल लिया। उसमें एक फोटो थी जिसमें घुटने से ऊपर तक का वन पीस पहने आकाश के काफी करीब खड़ी थी। दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। उस फोटो के साथ एक पेपर भी था। अर्नव ने उस फोटो को डायरी में डालकर टेबल पर रख दिया और उस पेपर को पढ़ने लगा। सॉरी भाई, आपने कितना समझाया था कि जिसे आपकी कदर न हो उससे दूर रहना चाहिए, कभी किसी से प्यार की भीख नहीं मांगनी चाहिए, कभी किसी के आगे खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, पर मैं आपकी एक भी बात नहीं मान सका। मैं धृति से सच में बहुत प्यार करता हूँ, ये जानते हुए कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, बस मेरा फायदा उठा रही है, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने उससे अपने प्यार की भीख मांगी, उसके प्यार को हासिल करने के लिए वो किया जो मैं कभी करना नहीं चाहता था, पर इतना सब करने के बाद भी मुझे उसकी मोहब्बत नसीब नहीं हुई। अपनी सच्ची मोहब्बत के बदले मुझे सिर्फ ह्यूमिलिएट मिली। सबके सामने मेरा मजाक बन गया। मुझे उस दिन पता चला कि वो वैसी नहीं जैसी दिखती है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि उसे मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वो बस मेरे पैसे और लुक्स की वजह से मेरे साथ थी, और जैसे ही उसे मुझसे बेहतर ऑप्शन मिला, उसने मुझे डिच कर दिया। और ऐसा करते हुए वो जरा भी गिल्टी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझसे पहले जाने कितने ही लड़कों का ऐसे इस्तेमाल किया होगा उसने, और जाने मेरे साथ रहते हुए कितनों के साथ रिश्ता बनाया होगा। मुझसे उसका दिया धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। उस दिन उसके वजह से सब मजाक उड़ा रहे थे मेरा, हंस रहे थे मुझ पर। मैंने इतनी ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं चाहकर भी सब भुलाकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस बात को 2 महीना बीत गया भाई, पर मैं अब भी कुछ भुला नहीं पाया हूँ। मुझे अब भी लगता है जैसे सब हंस रहे हैं मुझ पर और मेरी बेवकूफियों पर, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। हर पल डर लगता है मुझे कि वो मेरा वीडियो वायरल कर देगी, जिससे उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं फिर किसी को फेस नहीं कर सकूंगा। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ भाई। मैं ऐसे जी नहीं सकता। मैं हारना नहीं चाहता भाई। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, पर मुझसे अब ये दर्द, ये घुटन, ये अकेलापन अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। आप बहुत अच्छे भाई हैं और मैं आपसे घर में सबसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं आपका भाई बनकर ही इस दुनिया में आऊँगा, और उस जन्म में आपकी हर बात मानूंगा, आपकी हर सीख पर अमल करूँगा, आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। पर इस जन्म में मैं इससे ज्यादा आपका साथ नहीं निभा सकूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाई, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। इस पेपर पर कुछ निशान उभरे हुए थे जो सूख चुके थे, जिससे साफ जाहिर था कि इस पेपर ने आकाश के दर्द, उसके आंसुओं को खुद में समेटा था, और अब इसे पढ़ने के बाद अर्णव की आंखें नम हो गई थीं। अर्णव ने उस पेपर को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो बेजान कागज का टुकड़ा नहीं उसका भाई हो, और वो उसे गले लगाकर महसूस कर रहा हो उसकी मौजूदगी को। अर्णव कुछ देर तक उस पेपर को अपने सीने से लगाए बैठा रहा, फिर उसे फोल्ड करके वापस डायरी में रखते हुए खुद से ही बोला, तेरे दर्द और मौत का जिम्मेदार जो कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आकाश, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा भाई खड़ा है, जो तेरे गुनाहगार को उसके गुनाहों की सजा दिलाकर रहेगा। जिसने मुझसे मेरे भाई को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न गिरना पड़े, पर तेरे हर दर्द हर तकलीफ का बदला लेकर रहूंगा मैं। अर्णव ने आज फिर खुद से एक वादा किया। कुछ देर यहीं तन्हा बैठे अपने भाई के साथ बिताए अच्छे दिनों को याद करता रहा। फिर घड़ी ने रात के 1 बजाए, और यादों के भंवर से बाहर निकलकर वो हकीकत का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगा। अर्णव कमरे में आया तो उसे बेड पर इत्मीनान से सोती धृति नजर आई। वो धृति के पास आकर बैठ गया और एकटक उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, धृति अवस्थी, नफ़रत है मुझे इस नाम से। बे इंतहा नफ़रत करता हूँ मैं तुम्हारे इस चेहरे से, जिसकी मासूमियत के जाल में फंसा कर तुमने मेरे बेगुनाह भाई की जान ली है, पर चाह कर भी तुमसे नफ़रत का रिश्ता नहीं निभा पा रहा। वजह हो तुम, शक्ल सूरत नाम सब वही है, पर जिस धृति का जिक्र आकाश ने किया था, तुम्हारी पर्सनालिटी उससे बिल्कुल उलट है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर, नाम तो वही है, पर उस शरीर में आत्मा किसी और की है, या शायद ये भी तुम्हारा एक नया रूप है, लोगों को धोखा देकर उनसे अपना मतलब निकालने का। सच्चाई चाहे जो हो, पर मैं उसकी तह तक पहुँच कर रहूँगा, और मेरे भाई के गुनाहगार को सजा मिलकर रहेगी। अर्णव के माथे की नसें तनी हुई थीं और चेहरे पर तनाव भरे भाव मौजूद थे। आंखों के महीन रेशे खूनी रंग में रंगे थे, जो उसका गुस्सा दर्शा रहा था। वहीं आंखों में मौजूद नमी उसके दर्द की इंतहा बयां कर रही थी। अर्णव ने अजीब तरह से धृति के चेहरे को घोरा, और जैसे ही वहां से उठने लगा, धृति ने नींद में ही उसके हाथ को थाम लिया। अर्णव ने पलटकर उसे देखा तो धृति नींद में ही मुस्कुरा रही थी। उस निश्चल मुस्कान को देखते ही अर्णव का सारा गुस्सा कहीं गायब हो गया। सीने में मौजूद तड़पते दिल को जैसे सुकून मिल गया। धृति की मुस्कान उसके बदले की आग में झुलसते मन पर बरखा की ठंडी शीतल बूंद बनकर बरसी। धीरे धीरे अर्णव एकदम शांत हो गया और एकटक धृति को देखने लगा। अब धृति गलत है या नहीं, ये दूसरी बात है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अर्णव के भाई के साथ हुआ, उसके बाद उसकी नफ़रत ठीक है या नहीं। अपने भाई के कातिल के साथ ये बर्ताव करना सही था या नहीं। जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे।